السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. انشاءاللہ تعالیٰ، آج سے ہم دوبارہ اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں سیرے صحابہ کا. ابھی تک ہم نے چار جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سیرت کو پڑھا ہے، اور ہم سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کو مکمل کریں گے، جن میں آج جن صحابی رسول کو ہم پڑھیں گے وہ ہیں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے صحابہ میں سے ان کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، کس حوالے سے انشاءاللہ وہ آج دیکھیں گے، اور ان کو میں نے کیوں چوز کیا پہلے بیان کرنے کے لیے، وہ بھی آپ آج انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. عشرہ مبشرہ میں اور بھی صحابہ کرام ہیں، لیکن ان کی جو ایک حیثیت ہے وہ بڑی یونیک سی ہے. سبھی سمجھ لیں ایک گلدستہ ہیں، اس کے پھول ہیں، لیکن ہر ایک میں کچھ نہ کچھ چیز ہے جو ان کو ممتاز کرتی ہے. تو ابو عبیدہ بن الجراح، اصل میں تو یہ ان کی کنیت تھی. ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے عامر. عامر نام، ابو عبیدہ کنیت. ان کا لقب ہے امین الامہ. امین الامہ یعنی اس امت کا امین. ویسے ان کا سلسلہ نسب یہ ہے، عامر بن عبداللہ بن الجراح ابن ہلال بن احیب، اور پیچھے سے جا کے فہر کے ساتھ ملتا ہے. آپ کو پتا ہے فہر قریش فہر ہی ہیں، تو فہر کے جو دو بیٹے تھے ان میں ایک غالب اور ایک حارث، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالب کی پشت میں سے تھے، ان کے نسب میں سے تھے، اور ابو عبیدہ جو تھے وہ حارث کے. تو اس طرح جا کے ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ فہر پہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے. اب ان کا نام ویسے تو عامر بن عبداللہ ہونا چاہیے بن جراح، لیکن ہم کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح. کیا وجہ ہے کہ ان کی نسبت ان کے باپ کی بجائے دادا کی طرف کی جاتی ہے؟ تو اس میں عربوں میں یہ ویسے کو زیادہ ان یوژول بات نہیں تھی. بعض دفعہ دادا کی طرف اس لیے نسبت کی جاتی تھی کہ دادا کو زیادہ شہرت حاصل ہوتی تھی کسی وجہ سے، کوئی ان کا کوئی کارنامہ ایسا ہوتا تھا، یا باپ کی کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ لوگوں کے اندر مشہور نہیں، یا لوگوں میں زیادہ اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے تو اس وجہ سے، یا بہت کلوز کوئی ہوتا تھا اپنے دادا سے تو پھر بھی دادا کا نام آتا تھا. لیکن یہ بس سمجھ لیں کہ جراح جو ہے ان کے والد کا نام نہیں ہے، یہ ان کے دادا کا نام ہے. یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو شروع میں ہی اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اور دعوت سے یہ اسلام لائے تھے. اور یعنی ایک طرح سے آپ سوچیں، یہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے اگلے دن یہ اسلام لے آئے تھے، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ تو کفر کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی، اور یہ ہم آج دیکھیں گے بھی کہ کیسے ہوئی. ان کی ماں جو تھیں وہ بھی فہر خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھیں، اور یہی لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ وہ اسلام لائی تھیں، اور ان کے ایک بھائی تھے یزید، وہ بھی اسلام لائے تھے. یہ وہ یزید نہیں ہیں جن کو آپ مشہور جن کے بارے میں سنتی ہیں، یہ ان کے بھائی تھے جن کا زیادہ کچھ تذکرہ ملتا نہیں ہے، کچھ حالات ان کے ہمارے سامنے نہیں آئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خوش شکل تھے، ہنس مکھ تھے، ان کا قد لمبا تھا، تیکھے خد و خال تھے، और जो आपसे मिलता था उसकी तबीयत खुश हो जाती थी। बहुत आजिज मिजाज थे, शर्मीले भी थे, लेकिन जिस वक्त कोई लड़ने का, जंग का मामला आ जाता था तो इतने चाको चौबंद होते थे जैसे कोई शेर हो। इनके बारे में ये भी पता चलता है कि बहुत माहिर तीरंदाज थे, यानी 6 साल की उम्र में ही इन्होंने तीरंदाजी सीख ली थी, और जब 12 साल के हुए थे तो बहुत माहिर हो गए थे। ये पैरों के निशानों से पहचान लेते थे कि कौन यहाँ से गुजरा है, ऐसे होते थे ना पहले जमाने के अंदर जो निशानों से पहचानते थे। तो इसी तरह ये खोजी जिनको कह सकते हैं, तो बहुत इसमें महारत थी। कोई फौज कहीं से गुजरी हो तो बता देते थे कि कितने लोग थे इसके अंदर और कितनी सवारियां थी इसमें। निशानेबाजी के इंतहाई माहिर थे, अपनी सवारी के ऊपर सवार हो के भी निशाना लगाते थे चीज के ऊपर, तो उसको दो टुकड़े करते थे, भारी भरकम वजन उठा लेते थे। बाजू इंतहाई मजबूत थे। इनके खानदान में भी तीरंदाजी का बड़ी महारत थी। अच्छा, ये है कि ये जंग के जंगी हरबे में भी और जंग करने में भी बड़े माहिर थे, हालांकि इन्होंने कभी कोई जंगों में ऐसे कोई हिस्सा नहीं लिया था। तो जब ये इस्लाम लाए थे तो ये एक टीनेजर थी, 18-19 इनकी उम्र थी, और नबी अलैहिस्सलाम के पास इनको लाया गया था, तो ये इस्लाम लाए थे। इनकी मक्की ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता चलता। हमें बस ये पता चलता है कि इनका बाप इनको इतना मारता था कि ऐसे लगता था कि जैसे अब मर जाएंगे, बहुत इंतहाई तकलीफें देता था, शायद इसीलिए वो एक गोशा नशीनी में चले गए थे। और 2 दफ़ा बाज़ जगह पे आता है हिजरत करके हबशा गए, बाज़ जगह पे आता है कि नहीं सिर्फ दूसरी हिजरत थे हबशा में गए थे, और उसके बाद इन्होंने मदीना की तरफ भी हिजरत फरमाई थी। मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा करवाया था तो हजरत साद बिन मुआज वो इनके भाई बने थे। ये हाफिज़े कुरान भी थे, जैसे जैसे कुरान उतरता था वैसे वैसे ये उसको याद कर लेते थे। हमें ये भी पता चलता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे। एक जगह पे आता है कि किसी ने आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जब पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन था, तो फरमाती हैं अबू बकर सिद्दीक। फिर पूछा गया उनके बाद, फरमाती हैं उमर। फिर पूछा गया उनके बाद, फरमाती हैं अबू उबैदा। इसे भी आपको ये पता चला होगा कि ये कितने ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे भी थे। जाहिर है हर एक की कोई खसूसियात होंगी जिसकी वजह से ही किसी से प्यार होता है। इनके खानदान के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता चलता कि कुछ इन खानदान में कौन कौन था, सिर्फ ये पता चलता है कि इनकी एक बीवी थी या दो थी बस, और 2 बेटे थे, इससे ज्यादा नहीं पता चलता। यही पता चलता है कि कोई आगे शायद इनकी नस्ल नहीं बढ़ी, वो जो दोनों बेटे थे वो भी इनके साथ ही शहीद हो गए थे। जब हम इंशाल्लाह इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी शहादत कैसे हुई। और बाज जगह पे आता है कि नहीं, एक बेटे से आगे औलाद हुई थी, और आज भी इधर मोरक्को की तरफ फहरी खानदान मौजूद है। ये बड़े हंसमुख शख्सियत रखते थे। इनके बारे में अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि कुरैश में 3 लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे तमाम लोगों से बढ़ के ज्यादा हसीन, जिनका अखलाक सबसे उम्दा, जिनमें हया सबसे ज्यादा। अगर वो बात करते थे तो कतन झूठ नहीं बोलते थे। अगर उनसे कोई बात करता था तो उसको झुठलाते नहीं थे। और वो 3 है, कौन? सिद्दीक अकबर, उस्मान बिन अफ्फान और अबू उबैदा बिन जर्राह। ये नहीं कि बाकी लोग अल्लाह माफ करे को झूठ बोलते थे, मगर ये है कि किसी में कोई ऐसे सिफत होती है ना जो उसकी कमाल को पहुंची होती है, जो उसको मुमताज करती है। जैसे हजरत उस्मान के बारे में हया की बात आती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के बारे में आती है, बहुत अल्लाह के आगे रोने वाले गिड़गड़ाने वाले थे ना, और इसी तरह इनके बारे में ये आता है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मक्का में तो इन्होंने अपनी जो जिंदगी गुजारी बहुत तकलीफों में गुजारी, बहुत मसाए, लेकिन साबित कदम रहे। और फिर मदीना हिजरत की, और फिर वहां पर हमें जो पता चलता है कि ये तमाम गजबात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तमाम गजबात में। और खास उल खास हमें जब हम पढ़ते हैं गजवाए बदर के बारे में, तो उसमें एक ऐसा वाकया हुआ जो कि इनको यानी और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है इस लिहाज से कि जो वहां पे हुआ हुआ ये कि गजवाए बदर में अबू उबैदा बिन जर्राह ये बेखौफ और खतर दुश्मनों की सफों में घुस गए थे। बहुत जुर्रतमंद थे, बिफरे हुए चक्कर लगा रहे थे मैदान में, जैसे इनको मौत का कोई डर नहीं था। और जो ही ये कोई इनके साथ किसी के साथ मुंडभीड़ होती तो जीदारी के साथ लड़ते थे। अब एक आदमी ऐसा था कि जो इनके सामने बार बार आता था, और ये उससे कन्नी कतराते थे, एक तरफ हो जाते थे, बार बार अकड़ के सामने खड़ा होता था, लेकिन ये फिर पहलू तो ही कर लेते थे, इस यानी उसका मुकाबला करने से बच रहे थे, लेकिन वो बाजी नहीं आ रहा था, बार बार सामने आता था। अब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको अवॉइड करने में, लेकिन आखिर एक मरहला ऐसा आया कि तमाम रास्ते बंद हो गए, हत्ता कि वो और आप सामने सामने आ गए। लेकिन जब आपने देखा कि आप कोई चारा बाकी नहीं रह गया और अब लड़ना ही है, तो उसके सर पर तलवार का वार किया और वो ढेर हो गया। आप सोच सकते हैं कि ये कौन था, ये अबू उबैदा बिन जर्राह का बाप। अब इंसान सुन के हैरान रह जाता है, और अरबों के अंदर तो बाप और बेटा, और आज तक भी बाप और बेटे का जो एक ताल्लुक है वो कितना यानी करीबी ताल्लुक है। ये आपकी सदाकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। अल्लाह ताला को आपकी ये बात इतनी पसंद है कि आपकी शान में सूरह मुजादला आयत नंबर 22 उतरी है, इब्ने कसीर में या आप दूसरी तफासीर में देख भी सकते हैं, इसका जो तर्जुमा भी और इसके जो तफसीर है उसमें भी अबू उबैदा बिन जर्राह का जिक्र आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद अल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ आशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। तुम कभी नहीं पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखरत पर ईमान रखते हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिनको जो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, चाहे वो उनके बाप हो, चाहे वो उनके बेटे हो, चाहे वो उनके भाई हो या उनके अहले खानदान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को सब्द कर दिया, व अय्यदहुम बिरूह में, और अपनी तरफ से एक रूह अता करके उनको कुव्वत बख्शी। और अल्लाह ताला ने यहां तक नहीं फरमाया, फिर आगे भी फरमाया, युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलनहार खालिदीन फीहा। अल्लाह ताला उनको दाखिल करेगा जन्नतों में जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा रहेंगे वहां। और यहां तक भी नहीं अल्लाह ताला ने बस की, रदियल्लाहु अन्हुम वरदु अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। फिर यहां तक भी नहीं, उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही लोग हैं जो अल्लाह का ग्रोह है, अल्लाह की फौज है। अला इन्ना हिस्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, जान लो कि अल्लाह का ग्रोह फलाह पाने वाला है। ये कितना बड़ा एक कारनामा था इनका, जो कि इंसान कभी सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी कभी कोई कर सकता है। इसी तरह आप जंगे उहद में देखें तो उहद में भी इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत काम किया है, जिसकी वजह से भी मैं आज आपके सामने इनका जिक्र रख रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी बात है। इनकी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस जंग में नजर आती है। उहद में आपको पता है मुसलमानों को वक्ती तौर पे एक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और जब खालिद बिन वलीद वापस अपने साथियों को लेकर मुड़े थे, और उस वक़्त जब अचानक हमला हुआ तो भगदड़ मच गई थी, और नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ चंद सहाबा के साथ, कहा जाता है 10 जान निसार थे, 7 अंसार थे और 3 महाजरीन, इनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उहद के पहाड़ में पनाह ली थी, और दुश्मन ने आपकी आवाज़ सुन ली थी, और जब आपने मुसलमानों को आवाज़ दी, मुसलमानों को तो नहीं पता चला, लेकिन दुश्मन तेजी से आपकी तरफ बढ़े और फिर आपके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। ये वो 10 सहाबा थे जिनमें अंसार जो साथ थे वो तो एक एक करके शहीद होते चले गए, और इन सहाबा ने अपने सीनों के ऊपर तीर खाए और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया। इस वक्त है जो अबू उबैदा बिन जर्राह जो है, इन्होंने वो खूबसूरत काम किया कि जब ये लड़ाई का जोर खत्म हुआ तो देखा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो लोग जाहिर है तीर भी बरसा रहे थे और किस तरह से भी हमले करने की कोशिश कर रहे थे। साद बिन अबी वक्कास के जो भाई थे उतबा बिन अबी वक्कास, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर मारा था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हो गया था। अब्दुल्ला बिन शहाब ने आपको पेशानी पे मारी थी तलवार। अब्दुल्ला बिन कमिया जो सबसे बदबख्त था, उसने कसम खाई थी कि आपको कत्ल कर देगा, तो उसने आपके चेहरे पर तलवार की जरब लगाई, मगर इससे आपका चेहरा तो बच गया, लेकिन जो खोद थी ना हेलमेट, हेलमेट में कड़ियां होती थी, चेन जैसे समझ लें, तो वो चेन टूट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में उसके दो हलके पैवस्त हो गए। तो अब वो समझ लें अंदर चले गए हैं, और आपके ये हालत देखकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तेजी से आगे बढ़े कि आपके रुखसार मुबारक में से ये धंसे हुए खौद के हलके निकाल लें। इतने में अबू उबैदा बिन जर्राह भी आगे बढ़े, अर्ज की, खुदा रा इस खिदमत का मुझे मौका दे। आपका ये शौक देख के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तरफ हो गए, और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये था कि अगर मैंने हाथ से ये हलके निकाले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ बहुत होगी। तो आपने ऐसे किया कि अपने दांतों को आपके रुखसार मुबारक पे रख दिया और जोर से, इतनी जोर से खींचा कि पीछे जाके गिरे। इससे वो हलका तो निकल गया, लेकिन साथ इनका दांत मुबारक खुद का गिर गया। फिर उसके बाद दूसरा जो हलका निकालने के लिए आगे बढ़े हैं, तो उसके ऊपर भी अपना दांत रखा है और खींचा है और फिर पीछे जाके गिरे हैं। वो जो हलके की कड़ी थी वो तो निकल गई, मगर इनका दूसरा दांत भी शहीद हो गया। अब दोनों सामने के दांत सोचें गिर गए हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगले दोनों दांत टूट जाने के बावजूद अबू उबैदा नहायत खूबसूरत दिखाई देते थे। जब सहाबा उनको देखते थे तो कहते थे कि ये दो दांत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान हुए, उनके लिए निकले हैं, तो कहते हमें और ज्यादा प्यारे लगते थे। यानी जब देखते होंगे उनको तो ये याद आता होगा, ये बात इतनी मुझे पसंद आई है ना, हमेशा मेरा ये फेवरेट वाक्य रहा है कि इतने ज्यादा मोहब्बत करने वाले। और आपको पता है सामने के जो दांत होते हैं वो इंसान के लिए खूबसूरती के लिए भी बड़े वो होते हैं ना, हर एक बंदा इनको सोचता है कि ये मेरी ब्यूटी है, तो लेकिन उनके दांत, उन्होंने दांतों की परवाह नहीं की, उनकी तो जाने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निछावर हो जाती तो उनको परवाह नहीं होती थी। फिर गज़ाए खंदक में और बनू कुरैज़ा को निकालने में उस वक़्त भी साथ साथ थे, और इसी तरह बैत रिजवान में शरीक हुए थे। आपको पता है वैसे भी बदरी सहाबी जो हैं वो तो अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया ना कि बदरी साहब जो बदर में शहीक हो गए, फिर उसके बाद जो मर्जी करें बस उनके लिए यही एक अमल काफी है। वो अल्लाह ताला ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि वो बख्शे गए। बैत रिजवान में भी आपको पता है उन लोगों के लिए भी, अब ये मैंने आपको एक और वाकया सूरह मुजादला का भी बता दिया कि उसमें भी आ गया कि अल्लाह ताला राजी हो गया इनसे। और जो बैत रिजवान में भी हिस्सा लेने वाले सहाबा कराम थे, अल्लाह ताला ने उनको अपनी रजा की बशारत दे दी थी दुनिया में कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। मुकाम हुदैबिया पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा करने गए थे और हुदैबिया पे रोक दिए गए थे, तो कुरैश मक्का से जो अहदनामा तय पाया था इस पर भी उनकी शहादत थी, इन्होंने शहादत दी थी अबू उबैदा बिन जराह ने। 7 हिजरी में जब खैबर की फताहुशी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे, तो फिर उस वक्त भी ये साथ थे। अच्छा, इसी तरह हमें पता चलता है कि फतेह मक्का वाले दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंटर हो रहे थे, तो आपने 3 ग्रुप्स बना दिए थे, 3 ग्रुप्स बना दिए थे, और वो 3 ग्रुप्स तीनों तरफ से एंटर हुए थे मक्का में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिडिल में थे, और आपके सामने अबू उबैदा बिन जर्राह थे आगे आगे आपके, और ये झंडा थामे हुए थे आगे आगे चल रहे थे, तो इस तरह ये एंटर हुए। और उसके बाद इन्होंने ही नबी अलैहिस्सलाम का खैमा नसब किया था। इनके एक वाकया आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सरिया अलखबत में भेजा था, खबत यानी सूखे पत्तों का सरिया, इनको कमांडर बनाया था। और इस कदर उन दिनों तंग दिन थे मुसलमानों के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सिर्फ एक बैग दिया था खजूर का, और वो ही खजूरों उसी में से ये खजूरें डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने लश्कर में, और एक एक खजूर एक एक बंदे के हिस्से में आती थी। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि हम वो खजूर लेते थे और उसके बाद उसकी गुठली को चूस लेते थे और फिर पानी पी लेते थे। और किसी ने उनसे पूछा कि आप कैसे इससे गुजारा करते थे, तो फरमाते हैं इसकी कदर तो उस वक्त फिर आई जब वो एक खजूर भी नहीं रह गई थी, यानी खजूर खा ली। आप सोचें कि हम तो एक खजूर से सिर्फ रोजा खोलते हैं, और वो एक खजूर उनका पूरा दिन का मील होता था, इतने मुश्किल हालात थे। तो कहते हैं कि फिर पत्ते झाड़ लेते थे दरख्तों से और उनको पानी में उबाल के फिर वो खा लेते थे। अल्लाह हु अकबर, अभी ये लड़ने के लिए जा रहे हैं या कोई किसी जगह हालात को चेक करने के लिए जा रहे हैं, तो इतनी सहाबा की हालत मुश्किल हो गई थी, भूख से इतनी हालत खराब हो गई थी कि फिर मदीना की तरफ जब आ रहे थे तो यम्बू के मकाम पे जब पहुंचे समंदर के किनारे, तो वहां पे इनको एक बहुत बड़ी मछली मिली जो बीच पे पड़ी हुई थी, साहिले समंदर पे पड़ी हुई थी। इस मछली को कहते हैं अंबर, आईन नून बारा, बहुत बड़ी मछली। इससे आप अंदाजा लगाइए कि उस मछली के सिर्फ आंख के डेले में 13 सहाबा बैठ गए थे, इतनी बड़ी थी वो। अब सहाबा कराम को ये हुआ कि हम क्या ये खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो मुर्दार है, उस वक्त अभी इसका समुंदर की मुर्दार का नहीं पता था, तो अब इसका क्या करें। तो अबू अबैदा बिन जर्राह ने उस वक्त इज्तिहाद किया था कि हम मजबूर हैं और अल्लाह के रास्ते में हैं, लिहाजा ये हमारे लिए हलाल है। तो फिर सहाबा ने उससे खाया था, और कहते हैं कि इतनी वो बड़ी थी कि उसके आंख के जो डेला है इसके अंदर से बर्तन भर भर के ऑयल निकालते थे, और इसकी एक पसली उन्होंने जमीन के ऊपर खड़ी की तो उसके नीचे से एक सवार ऊंट के ऊपर बैठ के एक सवार गुजर जाता था और उसका सर नहीं टच होता था। अब ये लोग उसको खाते रहे काफी दिनों तक, बाज जगह आता है कि 10 दिन तक इसको खाते रहे, बाज जगह आता है 18 दिन तक खाते रहे। और फिर इसका गोश्त कुछ सुखा कर और मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आपने फरमाया ये तो अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है और मुझे भी दो इसमें से। तो यानी पता चला कि समुंदर का मुर्दार भी हलाल है। फिर हमें एक और बहुत ही प्यारा वाक्या इनके बारे में मिलता है, बहुत ही खूबसूरत। ये तो बहुत आजिज बिजात थी, इनको दुनिया की ये जो पावर और जिसको हम आज देखते हैं ना, लोग कैसे पावर हंग्री हैं, लोग कैसे ओहदों के पीछे और स्टेटस के पीछे और कैसे डिफरेंट कुर्सियों के पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका हाल क्या था, इब्ने इसहाक में ये वाकया मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमर बिन अल आस को भेजा एक सराया में। ठीक है, तो आमर बिन अल आस जो थे ये बहुत बाद के मुसलमानों में से हैं, यानी फतेह मक्का से कुछ अरसा पहले ये इस्लाम लेकर आए थे। तो अमर बिन अलास तो बहुत बाद के मुसलमान हैं और आप देखें इनका स्टेटस कितना बड़ा है कि ये तो शुरू के मुसलमानों में से हैं। तो अमर बिन अलास ने जहाँ पे भेजा गया था उनको, वहां से मजीद उन्होंने पीछे से फौज के भेजने का, कुमक भेजने का उन्होंने पैगाम भेजा कि मुझे और सपोर्ट चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दस्ता भेज दिया पीछे, और वो एक दस्ता के कैसा था कि उसके अंदर बड़े बड़े सहाबा भी थे। और इन सहाबा कराम के अंदर बाज जगह आता है कि अबू बकर सिद्दीक और उमर जैसे सहाबा कराम भी थे। अब जब ये दस्ता भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा को इसका सिपा सालार बनाया, इनका लीडर बनाया। और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बात कह के भेजी कि आपने वहां जाना है लेकिन किसी बात में अमर बिन आस के साथ आपने इख्तलाफ नहीं करना, इख्तलाफ में ना पड़ना, यानी सुलह सफाई के साथ ही चलना, इख्तलाफ में ना पड़ना। अब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझ आ गई थी, वो वहां पे जब पहुंचे अपना दस्ता लेके, तो अब मतलब क्या हुआ कि आप भी अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, तो दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि दूसरे का लीडर हो। जब वहां पहुंचे हैं तो अमर ने कहा कि आप जो है हमारी मदद के लिए आए हैं, लिहाजा मैं हूं लीडर और आप मेरे अंडर होंगे। अबू उबैदा ने फरमाया कि नहीं, आपका अपना दस्ता है, मेरा अपना दस्ता है, हम में से किसी के ऊपर इंचार्ज नहीं है। इस पर अमर ने इसरार किया कि आप हमारी मदद के लिए भेजे गए, लिहाजा आप हमारे अंडर काम करेंगे। तो इब्ने इसहाक लिखते हैं कि अबू उबैदा इंतहाई सहल इंसान थे, बहुत इजी गोइंग और नरम थे, और दुनिया के ये ओहदों और इनकी उनको कोई चाहत नहीं थी। जैसे तो ना पॉलिटिक्स एक बंदे के अंदर डिप्लोमेसी से चलना, इधर भी खुश उधर भी खुश करके, इधर भी अपना वो कर लिया उधर भी कर लिया और खुद आगे आगे बस बढ़ के मेरे पीछे ही हों लोग, बस मेरा ही नाम आगे हो जाए, इस तरह के नहीं थे। तो अबू उबैदा ने फरमाया, अमर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम दोनों इख्तलाफ में ना पड़ना, लिहाजा अगर तुम मुझसे कहोगे कि मैं तुम्हारे पीछे चलूं तो मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, इसलिए कि मैंने इख्तलाफ नहीं करना। तो अमर ने इसरार किया, ठीक है फिर मैं ही हूं जो लीडर हूं। उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया, ठीक है जैसे तुम कहते हो। हालांकि कहां इनका मकाम और मर्तबा, कहां अमर बिन आस का, जाहिर है सहाबा तो दोनों हैं लेकिन देखिए सहाबा कराम भी सारे एक लेवल के सहाबा नहीं है, कोई किसी लेवल का, क्योंकि जाहिर है जो पहले मुसलमान हुए उनका मकाम और मर्तबा बहुत ज्यादा है दूसरों से। लिहाजा ये ऐसे इंसान थे कि उनको बिल्कुल कोई लीडरी वगैरह का कोई ऐसा शौक नहीं था कि मैं जो लीडर बनाऊं, मुझे आगे करो, मैं ही होऊंगा, जो कि बहुत बड़ा एक फितना बन जाता है। और आपको पता ही है कि उसके बाद हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बाद में जो मुसलमानों में जंगें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फाइट्स होती रहीं कि जो है ना कौन किसके हाथ पे बैत करेगा, खलीफा कौन होगा। फिर हम देखते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम की वफात हो गई थी उस वक्त। अच्छा, उससे पहले भी एक वाक्या हुआ, वो पहले आपके सामने रखती हूँ कि जब 9th हिजरी में इस्लाम बहुत फैलने लगा, और आपको पता है सूरह नसर भी उतरी है ना, कि वफूद आ रहे थे इस्लाम लाने के लिए, ऐसे में नजरान से एक ईसाई वफद आया था। और आपने पढ़ा भी होगा आयात मुबाहला, के लानत करने की आयात नहीं, जो ईसाई उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो दावत दी थी, जब वो नहीं माने थे तो अल्लाह ताला ने ये आयात मुबाहला की उतार दी थी कि अब आप अपने औरतों और बच्चों और इन सबको ले आओ, और हम भी ले आते हैं, और एक दूसरे पे लानत करते हैं कि जो है ना, जो भी झूठा होगा उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। तो ईसाई फिर डर गए थे, उन्होंने कहा था नहीं, हमने मुबाहला नहीं करना। उस वक्त फिर ईसाइयों ने कहा कि आप ऐसा करें, हमारे साथ एक अपना कोई बंदा भेज दें जो हमारे अंदर हकम हो। हकम मतलब है कि हमारे जो झगड़े वगैरह उनको हल करने वाला, लेकिन हमें कोई अमीन बंदा चाहिए। अमीन समझते हैं ना आप, ट्रस्ट वर्दी, अमानतदार। और आज से पहले कौन था जो मक्का में मशहूर था? अमीन नबी अलैहिस्सलाम खुद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा शख्स रवाना करूंगा जो ताकतवर भी है और अमीन भी है, दयानतदार है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं उस दिन जल्दी जल्दी जुहर की नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचा कि शायद इस इंतखाब में मेरा नाम आ जाए। खुदा की कसम, मुझे कोई अमारत और क्यादत का शौक नहीं था, बल्कि मेरी तो तमन्ना ये थी कि वफद के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औसाफ बयान किए हैं, वो उनका मिसदाक मैं ठहरूं, यानी वो मेरे ऊपर फिट आते हो। कि आप सल्लम ने फरमाया ना कि जो ताकतवर भी होगा और अमीन भी होगा, तो ये आप सल्लम की यानी एक गवाही हो गई ना उसके हक में, तो कितनी बड़ी बात होगी जिसको आप चूज करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जोहर से फारिग हुए तो बड़े गौर से दाएं बाएं देखने लगे। उमर फरमाते हैं कि आप उचक उचक के, उमर रजी तुम मतलब आगे हो के दिखा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मुझे देख लें, ऊंचे हो के दिखा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा इधर उधर, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अबू उबैदा बिन जर्राह पे पड़ी। उनको इशारे से अपने पास बुलाया और इरशाद फरमाया, आप इस वफद के साथ जाएं और इनके बाहमी इख्तलाफात को अदल और इंसाफ के साथ निपटाएं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस मौके पर बेख्तियार पुकार उठा कि आज अबू उबैदा हमसे बाजी ले गए। ये दयानत और अमानत के आला मकाम पे फाइज थे, और बहुत से मकामात के ऊपर इनकी दयानतदारी, इनकी अमानत, इनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो सामने आई थी। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की जमात को कुरैश के काफले के लिए भेजा, तो अबू उबैदा बिन जराह को उस जमात का अमीर मुकर्रर किया। और वहां पे भी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनको कई एक्सपीडिशंस में भेजते रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में जो एक बड़ी बात फरमाई ना, गालिबन वो नजरान के वफद के उसके ऊपर ही थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है, और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। इतनी बड़ी बात है ना, सोचिए कितना बड़ा ऑनर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसको ये खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया वो अबू उबैदा बिन जर्रा। तो यानी अमीन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, आपके बाद तो सिर्फ यही हैं जिनको आपने ये इजाज और ये इतना बड़ा टाइटल दिया है। जब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह को प्यारे हो गए तो सकीफा बनू साइदा, बताया था ना मैंने आपको इससे इसके बारे में, सकीफा बनू साइदा के बारे में। ये एक बाग है, अभी भी है ये मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब। जो लास्ट में उम्रे पे गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी खिड़की से, होटल की खिड़की से बिल्कुल सामने नीचे नज़र आ रहा था। बहुत ही मुझे लुत्फ आया इसलिए कि ये सारे सीन मेरे जहन के अंदर आ गया कि एक दिन यहाँ पर वो कैसे बैठे होंगे सहाबा कराम। तो ये एक कैनोपी सी आप कह लें, जिस शेड सा, जिसके नीचे सहाबा बैठते थे कोई बातचीत करने, एक बाग है तो अभी भी उसके गिर्द चार दीवारी उन्होंने की हुई है, तो इसको सकीफा बनू साइदा कहते हैं। तो उसमें अंसार जमा हुए थे और ये फैसला करने के लिए कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का मनसब किसको मिलेगा। तब अबूबकर सिद्दीक, उमर, इनको पता चला था रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि ऐसे अंसार जमा हुए हैं वहाँ पे, तो मस्जिद नबवी से ये लोग निकले हैं और साथ अपने अबू उबैदा बिन जराह को लिया और वहाँ गए। और वहाँ जाके कहा जाता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने उमर बिन खत्ताब और अबू उबैदा बिन जरा, इन दोनों का हाथ अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उठाया और फरमाया कि आप ए अंसार इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लें। क्योंकि पहले अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बड़ी खूबसूरत तकरीर की थी ना, उनको कहा था कि आप वजीर हो सकते हैं लेकिन खलीफा कुरैश में से ही होगा। तो उसके बाद इन दोनों के हाथ उठाए थे कि आप इन दोनों में से किसी एक को खिलाफत के लिए चुन लें। अगर ये जिंदा होते तो आज खुलफाए राशिदीन में इनका नाम होता। लेकिन हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ था। तो लेकिन क्या हुआ कि उमर और अबू अबैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह तआला दोनों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि हमारे खलीफा तो अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने होने चाहिए। तो इसके बाद अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने के हाथ पे बैत कर ली थी उन्होंने, और आपके दौरे खिलाफत में आपके मुआविन रहे, आपके खैरख्वाह रहे और कई एक्सपीडिशंस पे गए। फातेह शाम, जिनको कह सकते हैं कि सीरिया का जो इलाका है, सिर्फ सीरिया नहीं था उस वक्त, जॉर्डन भी था, फलस्तीन भी था, लेबनान का हिस्सा भी था, ये सारा एरिया शाम कहलाता था। इसको फतह करने वाले यही थे। तो ये यानी शहरों पे शहर फतह करते चले गए थे। अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ही ये निकल गए थे, उनको भेजा गया था। हज़रत उमर के दौर में भी ये बड़े उनके इताअत गुजार रहे। तो इन्होंने बड़े शहर फतह किए और पूरा मुल्के शाम को फतह करना, अगर कहा जाए कि किसके सर पे ये सेहरा है तो ये यही है अबू उबैदा बिन जर्रा। इस्लामी हुकूमत की सरहदें मशरिक में दरियाए फुरात से लेके शिमाल में एशियाई कूचक तक पहुंच चुकी थी इनके वक्त में। तो ये मतलब इलाके, पहले इन्होंने छोटे छोटे इलाके फतह किए, दमिश्क से आगे पहुंचे, रूमी फौज का आमना सामना इन्होंने किया। समझ लें कि पहले जो लड़ने वाले थे रूमी फौज के साथ, बड़ा मुकाबला जो हुआ था, जिस जंग को आप जंगे यरमूक के नाम से आपने कभी जरूर सुना होगा, जंगे यरमूक का, उसमें इन्होंने रूमी फौज के साथ मुकाबला किया था। और अबू बकर सिद्दीक ने तो के दौर के अंदर से खालिद बिन वलीद कमांडर थे। देखें जो शाम का इलाका था ना, बहुत बड़ा था, तो लिहाजा यजीद बिन अबी सुफियान, जो इकरमा जो मुआविया के बड़े भाई थे, हज़रत मुआविया, उनके बड़े भाई यजीद बिन अबी सुफियान थे, वो पहले फौत हुए थे तो उसके बाद मुआविया बने थे। हमने शाम की जो बातें थी हज़रत अली का, जो जब हमने सीरत पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पे मुआविया गवर्नर थे शाम के, तो वो भी निकले, उनको भी भेजा गया था, यजीद बिन अबी सुफियान को, अमर बिन आस को, इनको भी। तो इलाके फतुहात का सिलसिला हर तरफ से इनके इन लोगों की कयादत में जारी था। कहा जाता है कि अबू बैदा को हिम्स की तरफ भेजा, यजीद बिन अबी सुफियान को दमिश्क की तरफ भेजा, शराहबील एक और सहाबी है उनको उर्दन की तरफ भेजा, और अमर बिन आस को फलस्तीन की तरफ भेजा। और सबका कहा गया था कि सबके अबू उबैदा जो है ना, सबके इंचार्ज होंगे, समझ लें। सब जब भी एक जगह पे जमा होंगे ना ये अगर चारों, तो अबू उबैदा बिन जरहा इनके यानी कमांडर होंगे। तो अब आप देख लें कि इनको लोग कहते थे अमीरुल उमरा, ये सारे जो अमीर हैं उनके ऊपर भी अमीर, तो फरमाते थे नहीं, मैं एक कुरैश का आदमी हूं, बस एक मुसलमान हूं कुरैश का, बस। ये लीडरशिप का जो वो होता है ना, वो दिमाग पे चढ़ जाता है, इसका भी एक नशा होता है, वो इनके दिमाग पे नहीं चढ़ा था। फरमाते थे तुम में से कोई गोरा या काला है, और जिसके अंदर भी तकवा है मैं उस जैसा हूं, बस मैं उसमें से हूं। तो फिर अब आप देखेंगे ये बहुत बड़ा फितना होता है जो इंसान को बहुत सारी चीजों के अंदर पीछे आगे कर देता है, दीन के अंदर भी उसके ये जो हुब्बे जा है दीन के अंदर भी उसके खलल पैदा करता है। लेकिन इनको कभी भी ये कयादत इतनी बड़ी फौजों की मिली और फिर आगे से आगे बढ़ते गए और फतूहात होती चली गई, तो कभी भी इनके जहन के ऊपर दिमाग के ऊपर ये चीजें सवार नहीं हुई थी। बहुत सारी जंगों के इनके बारे में आता है, फहल की एक जंग, फिर और भी बहुत सारी जंगें हैं कि जिनके जिक्र बुक्स में आता है, दो तीन का मैं आपके सामने जिक्र कर देती हूँ। एक फहल का मार्का था जहाँ पर रूमियों के साथ इनका मुकाबला हुआ, तो इन्होंने मुसालहत का पैगाम भेजा, उनके साथ बातचीत के लिए एक सफीर बुलाया, तो ये सफारत तो बेनतीजा निकली। लेकिन रूमियों ने कहा कि हम डायरेक्ट अबू उबैदा बिन जर्राह से बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना एक मैसेंजर भेजा। जिस वक्त वो पहुंचा तो देख के हैरान रह गया कि यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रही कि कौन है जो अफसर है और कौन है जो मातहत है, सब एक ही तरह बैठे हैं, एक कोई अदना आला का तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। आखिर उसने पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है, लोगों ने अबू उबैदा बिन जर्राह की तरफ इशारा किया, उस वक्त वो जमीन पे बैठे हुए थे। उसने ताज्जुब से कहा, क्या वाकई ये तुम्हारे सरदार हैं? लोगों ने कहा हाँ। कासिद ने कहा तुम्हारी फौज को दो अशरफियां हर एक को देंगे, तुम यहां से चले जाओ। अबू उबैदा ने इनकार किया और कासिद के तेवर देखकर फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया, और एक एक सफ में जाते थे और कहते थे खुदा के बंदो सबर के साथ अल्लाह से मदद चाहो, क्योंकि अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो फिर मुसलमानों की कलील तादाद थी और रोमी 50,000 थे, और फिर भी मुसलमानों ने उनको शिकस्त दे दी। फिर इसी तरह हिम्स की फतह, यहाँ से भी छोटे छोटे मकामात फतह करते हुए हिम्स की तरफ बढ़े थे, तो मुहासरे का उन्होंने मुहासरा किया था। कुछ अरसे तक अहले हिम्स वो इंतजार कर रहे थे कि रूमी जो कैसर रोम है उसकी तरफ से कोई मदद आएगी, कोई कुमक आएगी, लेकिन जब नहीं आई तो उन्होंने खुद बहुत शहर इनके हवाले कर दिया। तो इन्होंने वो शहर उबादा बिन सामित के हवाले किया और खुद आगे बढ़ गए। फिर एक और शहर था लाजाकिया, वहां उन्होंने ये जब पहुंचे तो इन्होंने एक नई तदबीर की थी कि मैदान में ना बहुत सारे गार खुदवा दिए थे, यानी गड़े खुदवा दिए थे, और फिर मुहासरा उठा के चले गए। शहर वालों ने समझा कि अब तो ये चले गए, तो वो निकल आए, किलों से निकल आए और अपनी रोज की जो काम काज थे वो करने शुरू कर दिए, शहर के दरवाजे खोल दिए। अब लेकिन अबू उबैदा बिन जर्राह उसी रात को अपने सिपाहियों के साथ पलट के उन गढ़ों में छुप के बैठ गए, सुबह के वक्त निकले और शहर में घुसकर आसानी के साथ पता कर लिया। अब यरमूक का वाकया मैं आपको खास तौर पे बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अहम जंग है। असल में रूमी जो थे वो आपको पता है सुपर पावर थी, और ये बार बार जो शिकस्त खा रहे थे हर जगह, तो हरेकल जो था शाह रोम उसकी दावत पे तमाम तरफ से फौज उनकी जमा हो गई थी, और अबू उबैदा को खुद जो शाम के उमरा और रुआसा थे ना, रईस लोग थे, हालांकि वो ईसाई थे लेकिन इतने ज्यादा इनके फैन हो गए थे कि वो खुद जासूसी लाके करते थे और इनको बताते थे कि ये वो लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने आके इत्तला दे दी कि वो इस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। तो अबू उबैदा बिन जर्राह ने उसके बाद हर तरफ से जो यजीद बिन अबी सुफियान की राय पे हर तरफ से जो मुसलमानों के सिपा सालार डिफरेंट जगहों पे लड़ रहे थे उन सब को लिख भेजा कि आप सारे आ जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर रहा था हरेकल। अब क्या हुआ कि मुसलमानों ने आपस के अंदर मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या ये जो हमारे इलाके हैं जिनको हमने फतह किया है इनको छोड़ के हम जाएं और वहां पे जमा हों दमिश्क, या क्या करें, अब हम क्या अपनी फैमिलीज को यहाँ छोड़ जाएं। कुछ ने कहा कि नहीं, हमें अपनी फैमिलीज को नहीं छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये ईसाइयों के इलाके, उनके ऊपर हम अपनी फैमिलीज छोड़ के और खुद निकल जाएं सारे के सारे तो ये तो सेफ नहीं होगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम क्या करें जब सारे निकल रहे हैं, और इन ईसाइयों से ये जिजिया लेते थे जिसको खराज या जिजिया या टैक्स कहते हैं, कि जिजिया किस चीज़ पे होता था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी जान माल आपकी इज्जतें प्रोटेक्टेड होंगी। तो जब ये यहाँ से निकलने लगे तो इन्होंने ईसाइयों को जिजिया वापस कर दिया, और हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह ने फरमाया ये तुम्हारी हिफाजत का मुआवजा था, हमने ये तुमसे इसलिए लिया था कि तुम्हारी हिफाजत करेंगे, लेकिन जब हम नहीं कर सकते तो हम हक नहीं रखते कि हम ये रकम अपने पास रखें। तो लाखों रुपया उन्होंने जो वसूल किया था सब वापस कर दिया। ईसाइयों पे इतनी ज्यादा इस चीज की यानी हक पसंदी और इंसाफ की इतनी ज्यादा उनके ऊपर धाक बैठी, इतना असर हुआ कि वो रोते थे और जोश के साथ कहते थे अल्लाह तुम्हें वापस लेकर आए, खुदा तुम्हें वापस लेकर आए। सोचे ना, जो बंदे दिल जीत लेते हैं फिर उनका यही होता है। फिर कहते हैं इस दौरान में उर्दन से भी रूमियों की जो तरफ से कोई एक कासिद आया था, और वो जब आया तो शाम हो चुकी थी, जरा देर के बाद मगरिब की नमाज शुरू हुई, मुसलमान नमाज पढ़ने लगे। उसने जब देखा कि कैसी ये अजीबो गरीब कैफियत है, वो हैरान रह गया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो इसने अबू उबैदा से सवालात किए, जिनमें से एक ये भी था कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहते हो, तो उन्होंने कुरान की आयतें बता दी। जब उसने ये आयतें सुनी और उनका तर्जुमा सुना तो बेइख्तियार कह उठा कि बेशक ईसा अलैहिस्सलाम में यही सिफात है, और दर हकीकत वो अल्लाह के पैगंबर है। ये कह के वो मुसलमान हो गया, और उसने कहा कि मैंने नहीं अब वापस जाना। लेकिन अबू उबैदा ने फरमाया नहीं, रूमी सोचेंगे कि पता नहीं इन्होंने बदहती की, हमारे सफीर को मार दिया या क्या किया, तो आप वापस जाएं, हम कल जो अपना सफीर भेजेंगे उसके साथ बेशक आप आ जाना। अगले दिन जब अपना सफीर भेजा तो कोई निगोशिएशन हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, मगर हाँ ये है कि वो उनके साथ वापस आ गया। मुसलमानों की हर जगह सिर्फ दो ही शर्तें होती थी हर मौके पे, या तो इस्लाम ले आओ या फिर जिजिया देने के ऊपर तैयार हो जाओ, बस। किसी को जबरदस्ती थोड़ी मुसलमान करते थे कि नहीं आपने जरूरी मुसलमान होना, बल्कि इस्लाम ले आओ, अगर इस्लाम नहीं लेकर आते तो दूसरी ऑप्शन ये है कि ठीक है फिर जिजिया दिया करो, और जिजिया ऐसे ही नहीं लेते थे, अब उनकी जान माल महफूज हो गए। तो हम देखते हैं कि यरमूक में क्या हुआ था, कि यरमूक में फिर सब तरफ से मुसलमान फौजें एक जगह जमा हो गई, और ये जंग इसलिए इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि एक तरफ रोम की ताकत थी पूरी, यानी 2.5 लाख रोमी थे, और दूसरी तरफ मुसलमान कितने, 40,000। अब ये वो वक्त था कि हजरत खालिद बिन वलीद कमांडर हैं, और उस वक्त आपको याद होगा हजरत उमर के जब हम हालात पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हजरत उमर ने एक दफा में हजरत खालिद बिन वलीद को माजूल करके उनकी जगह पे हजरत अबू उबैदा को कमांडर बनाया था। तो हजरत उमर की तरफ से जब खत आया कि अब से खालिद नहीं है कमांडर, कमांड अबू उबैदा करेंगे, तो अबू उबैदा खामोश हो गए, उन्होंने इस चीज को जाहिर नहीं किया, और जंग के बाद हजरत खालिद बिन वलीद को ये खत बताया तो उन्होंने फरमाया कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं नहीं चाहता था कि आपका जोर तोड़ो, और हमें दुनिया की हुकूमत थोड़ी चाहिए। हम इस दुनिया के लिए नहीं करते, हम सब भाई भाई हैं। आज मुझे बताएं कौन है जो ऐसा कर सकता है। ये वो इस्लामी तारीख की जंग है कि उसके बाद ही फिर आप देखें कि जो यरूशलम भी जो गिरा है ना, जरूसलम, ये भी उसके बाद ही मुसलमानों के हाथ में आया था। इतनी मुसलमानों ने स्ट्रेंथ पकड़ी थी, और इसमें बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए थे, जो बदरी सहाबी भी थे। लेकिन आप सोचें कि ये एक मोजे से कम नहीं है कि एक तरफ एक सुपर पावर थी, इतना बड़ा लाओ लश्कर, उनकी तादाद 2.5 लाख, वो अपनी होम ग्राउंड पे हैं, उनके पास असलहा भी जबरदस्त है, और उनके पास खाना पीना और हर चीज की फरावानी। और दूसरे हैं वो अरब के वो लोग जो वहां से पहले तो कभी नहीं निकले थे, और वो एक दूर की जगह पे आए हैं, सफर करके आए हैं, रूमियों के मुल्क में है, साजो सामान भी कम है, वो पीछे से भी नहीं कुछ और ला सकते। अब ऐसे मुकाबला करना कितनी बड़ी बात है। बास कहते हैं कि ये वाला मौका था जिसमें के ये खत हजरत उमर की तरफ से पहुंचा था। बास कहते हैं कि नहीं, कोई और जंग थी जिसमें कि ऐसा हुआ था, मगर ये और खालिद बिन वलीद दोनों इस जंग में मौजूद थे। और बास कहते हैं अबू उबैदा बिन जराही इसके अंदर कमांडर थे, और वो दूसरी जंग थी। तो लेकिन हमें ये पता चलता है कि इन्होंने कभी इस चीज को बड़ी बात नहीं बनाया था। इससे आप अंदाजा कीजिए कि जब मैंने आपको बताया था ना कि जब जरूसलम फतह हुआ था, पता क्या हुआ था कि जिस वक्त उनका मुहासरा किए रखा गया था बहुत अरसे तक, और उसके बाद फिर उन लोगों ने एक ही शर्त रखी थी कि आप ऐसा करें कि आपके खलीफा आए और वो आके चाबियां लें हमसे, तो हम तब देंगे, और बगैर जंग के आपके हैंड ओवर कर देंगे ये जगह। उस वक्त हजरत उमर तशरीफ लाए थे, और जब हजरत उमर आए तो उनकी एक आदत थी कि अपने जर्नैलों को और इनको भी जरा चेक में रखते थे। तो उन्होंने हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा से फरमाया कि आप मुझे अपने घर ले चलें। तो आगे से वो कहने लगे, आप मेरे घर जाके क्या करेंगे, आप रोएंगे मेरे घर जाके और कुछ नहीं है। और फरमाया कि नहीं, आप मुझे अपने घर लेके चलें। तो अबू उबैदा बिन जर्राह जब अपने घर लेकर गए तो ये देख के हैरान हो गए कि ये जो अमीरे शाम है, शाम के वाली थे, शाम के मतलब समझ ले हुक्मरान थे, और इनके घर में क्या है, कुछ भी नहीं, कोई सामान ही नहीं था घर में। नहीं, वो चाहते तो वो कुछ भी ले सकते थे, कुछ भी अपने लिए, मरात। और दूसरे मुसलमानों में ऐसा था, बल्कि एक जगह पे आता है कि हजरत उमर ने जब देखा हजरत खालिद बिन वलीद को और एक और सहाबी यजीद बिन अबी सुफियान, तो उनको जब देखा कि इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और वहाँ की जो जरक बरक पोशाकें हैं, और जो वहाँ के मतलब एक वो होता है ना एक तरीकाकार वहाँ का, तो हजरत उमर ने जमीन से मट्टी उठा के उनकी तरफ फेंकी और फरमाया, अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है तुमको मदीना छोड़े, और तुमने रूमियों वाले तरीके अपना लिए, यानी जैसे वो लग्जरीज में रहते हैं। तो 1 साल भी नहीं गुजरा था और ये होना शुरू हो गया था। और इनका ये हाल था कि इनके घर के अंदर कुछ भी नहीं था, एक तलवार थी, एक ढाल थी, एक बिस्तर था। पूछा, तुम ये कैसे रह रहे हो? ने फरमाया, मेरे लिए यही काफी है। खाना लाके आगे रखा तो रोटी के कुछ टुकड़े थे और पानी। तो हज़रत उमर रो पड़े और फरमाया, अबू उबैदा, इस दुनिया ने सबको बदल दिया सिवाय तुम्हारे। अल्लाह हू अकबर, सबको बदल दिया सिवाय तुम्हारे। बहुत सादा जिंदगी गुजारने वाले थे, हालांकि जब इतनी फतूहात हो गई थी तो ऐसा नहीं था कि कुछ था नहीं। एक दफा हज़रत उमर ने इनकी तरफ 4,000 दिरहम भेजे, तो कासिद को कहा कि देखना कि क्या करते हैं। तो उन्होंने आके बताया कि सब अल्लाह के रास्ते में दे दिए। फिर एक दफा जो मैंने आपको कहत का बताया था कि हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ा था, बहुत सख्त कहत हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने जितने भी अपने यानी दूसरे जगह पे मुसलमानों के गवर्नर वगैरह थे, उन सबको कहा कि आप लोग जो है अपनी अपनी जगह से खुराक के भेजें, एड भेजें, जिसको हम कहेंगे एड। तो सब ने भेजी थी और इन्होंने 4,000 ऊंट भेजे थे, 4,000 ऊंट सामान से लदे हुए थे। ये 18 हिजरी में हुआ था, सामान से लदे हुए। तो ऐसा नहीं था कि उस वक्त इनके पास कुछ था नहीं तो वो क्या करते, इतना कुछ था। बल्कि एक दफा हजरत उमर के, इससे आपको अंदाजा थोड़ा होगा कि अबू बैदा बिन जर्राह ने अंताकिया से खत लिखा, वहां पे वो ठहरे हुए थे इस्लामी फौज के साथ, और लिखा कि अंताकिया की आबो हवा तो बहुत अच्छी है, नेमतों की भी फरावानी है, अगर इस्लामी फौज को मुसलसल यहाँ रखा गया तो मुझे डर है कि वो सहल पसंद ना हो जाए, कि बहुत ही इजी अब ले ले लाइट ले लें और जिहाद और किताल में कोई किरदार ही अदा ना कर सके। तो असद उमर ने जवाब में लिखा था कि अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों पे जो नेक अमाल करते हैं तैयबात हराम नहीं की है, तो कोई बात नहीं है, आपका फर्ज है कि आप मुसलमानों को आराम पहुंचाएं, वो थक चुके हैं हम जाहिर है ब्लड के भी, और तो उनको खाने पीने और आराम के मौके भी दें। तो खुद इनका ये हाल था ना, इसलिए ही वो ये ऐसे कह रहे थे। इसी तरह हमें ये भी एक वाक्या मिलता है कि एक दफा हजरत उमर के जमाने में उनके साथ और सहाबा बैठे हुए थे, तो फरमाते हैं कि हर कोई अपनी अपनी कोई आरजू बयान करे, कोई तमन्ना, किसी ने कहा मुझे ये तमन्ना है, किसी ने कहा ये तमन्ना है, मैं इतना सोना मिल जाए मैं अल्लाह के रास्ते में दूं, किसी ने कहा इतने हीरे जवाहरात दे दे मुझे अल्लाह ताला तो मैं अल्लाह के रास्ते में दूं। तो सैयदना उमर ने फरमाया कि मेरी आरजू ये है कि ये दुनिया अबू उबैदा बिन जर्राह, मुआज बिन जबल और सालिम और हुजैफा बिन यमान, इन जैसे लोगों से भर जाए और मैं इनको अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए इस्तेमाल करूँ। ये कितना बड़ा ऑनर है इनके लिए, इतना बड़ा ऑनर। इसी तरह जब हजरत उमर की वफात होने लगी थी, तो आपको पता है ना जिस वक्त मैंने आपको बताया था कि वो तो पहले उनको वो जख्मी थे और जख्मी हुए थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ लोगों को, 6 लोगों को अपॉइंट किया था कि ये लोग इसके बाद खलीफा मुंतखब करेंगे, चूज करेंगे। तो उस वक्त हजरत उमर ने फरमाया था कि अगर अबू उबैदा बिन जर्राह जिंदा होते तो मैं उनको खलीफा बनाता, कोई शूरा ना बनाता, उनको खलीफा बनाता, और अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछता कि तुमने उनको कैसे खलीफा बना दिया, तो मैं कहता कि मैंने उनको इसलिए खलीफा बनाया कि तेरे नबी ने फरमाया कि वो इस उम्मत के अमीन है। सुभान अल्लाह। तो आपको तीसरे खलीफा कौन मिलते, जैसे मैंने आपको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली रिवायत बताई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे मोहब्बत करते थे, तो फरमाती हैं अबू बकर सिद्दीक से, फिर किससे करते थे उमर से, फिर किससे करते थे अबू बैदा बिन जरा। तो उनसे किसी ने पूछा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को खलीफा नामजद करते तो किसको करते, फरमाती हैं अबू बकर सिद्दीक को, फिर किसको करते, फिर फरमाती हैं उमर को, फिर पूछा गया किसको करते, फरमाती हैं अबू बैदा बिन जर्रा। तो सोचिए जरा ना, इन सारी बातों से पता चलता है कि अगर ये जिंदा होते तो उस वक्त ये खलीफा बनते, लेकिन ये उस वक्त तक जिंदा नहीं थे। हुआ क्या, ये 18वीं हिजरी में जिस वक्त के ये कहत फैला था ना, और मैंने आपको बताया कि इतना कहत फैल गया था और फिर इन्होंने इतने सारे ऊंट भेजे खुराक समेत, तो जब ये सबसाइड हो गया तो उसके बाद हजरत उमर निकले। हजरत उमर निकले कि मैं जाता हूँ, जब सारा यानी मामला सारे ठीक ठाक हो गए थे, तो उस वक्त हजरत उमर लोगों के साथ निकले, बाज लोगों के साथ, कि अब ये सफर पे जा रहे थे शाम की तरफ। दौरे पे जिसको कहेंगे, और जब वहां पे सरहद पे पहुंचे तो वहां पहुंच के पता चला कि आगे ताऊन की वबा फैली हुई है। ये भी 18 हिजरी का ही वाकया। और ताऊन क्या था? प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ कहते थे, यानी किसी को अगर हो जाता था ना, वो बचता नहीं था, शहर के शहर वाइप आउट हो जाते थे। तो शाम से पहले ही सरख नामी एक मुकाम पे पहुंच के उन्होंने वहां के जो बड़े बड़े ओहदेदार थे उन्होंने आपका बड़ा इस्तकबाल किया। अब आगे अभी जाना था तो इन्होंने अपने लोगों से मशवरा किया कि हमें आगे जाना भी चाहिए या नहीं, जब आगे का ताउन फैला हुआ। तो दो ग्रोह बन गए, एक ने कहा आप अल्लाह ताला की रजा के लिए निकले हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे नहीं, जब कोविड फैला तो कुछ ने कहा कि नहीं जी कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जाएं जहां पे भी जाएं और बस अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। कुछ ऐसे जोशीले लोग होते हैं। किसी ने मशवरा दिया ये एक आजमाइश है, आपको खुद को क्यों हलाकत में डाल रहे हैं। इसके बाद आपने जो फतेह मक्का में शामिल हुए थे बदरी सहाबा थे, यानी जो सीनियर सहाबा कराम थे, उनको बुलाया, उनसे पूछा कि आप बताएं। तो उन्होंने सबने मशवरा दिया कि आप वापस पलट जाएं। सैयदना उमर ने ऐलान फरमा दिया कि हम सुबह वापस जा रहे हैं। उस मौके पर अबू बैदा बिन जराह ने अर्ज किया कि आप अल्लाह की तकदीर से भागना चाहते हैं, बहुत इनका ईमान स्ट्रांग था अल्लाह की तकदीर के। तो सैयदना उमर ने फरमाया अबू बैदा आप जैसे आलिम और फकीह शख्स को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भागना चाहते हैं। अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं, उसकी तकदीर की तरफ ही। समझ आई बात? ये बहुत उनकी मशहूर स्टेटमेंट है, अल्लाह के कदर से उसकी कदर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी ये बातें जारी थी, अभी बातचीत चल रही थी कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ तशरीफ ले आए। उन्होंने जब ये बातचीत सुनी तो कहने लगे इस मसले में मेरे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए हदीसें हर एक को हर एक हदीस तो नहीं पता होती थी उस वक्त ना, तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम सुनो कि किसी शहर में ये वबा मौजूद है ताउन की तो वहां मत जाओ, और अगर तुम इस वबा के फूट पड़ने से पहले ही वहां पे हो तो वहां से निकलो ना। तो वो फिर आगे जाने से रुक गए थे। ठीक है, तो यानी हजरत उमर तो वापस आ गए, लेकिन हजरत तो अबू उबैदा बिन जरहा मुल्के शाम में चले गए, अपने जो उनकी फराइज थे वो अंजाम देते थे। तो अब जब वहां पे बहुत फैल गया ये सारा और सूरत हाल बड़ी नाजुक हो गई, हजरत उमर को इसका पता चला कि बीमारी से लोग बड़ी तेजी से दुनिया से जा रहे हैं, तो फौरन एक कासिद को खत दे के रवाना किया अबू बैदा बिन जर्राह की तरफ। और खत में क्या लिखा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। खत मिलते ही फौरन मेरी तरफ चल पड़े, रात को मेरा खत मिले तो सुबह का इंतजार ना करना, और अगर सुबह को मिले तो रात का इंतजार ना करना। मुझे आपसे ऐसा काम है जो वो आपसे मिलके ही मैं बता सकता हूँ। सुभान अल्लाह, जब उबैदा बिन जर्राह ने हजरत उमर का खत पढ़ा तो फरमाया मुझे पता है कि अमीरुल मोमिनीन को मुझसे क्या जरूरी काम है। दरअसल वो एक ऐसे शख्स को बाकी रखना चाहते हैं जो इस दुनिया में हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है। फिर अमीरुल मोमिनीन को खत का जवाब लिखा कि अमीरुल मोमिनीन सलाम अर्ज है, मुझे ये मालूम है कि आपको मेरे साथ क्या जरूरी काम है। मैं इस वक्त लश्करे इस्लाम में हूं, आज मुसलमान जिस मुसीबत में मुब्तला है मैं इस नाजुक हालत में उनको छोड़ के नहीं आ सकता, ना मैं उनसे जुदा होना चाहता हूँ। यहाँ तक के रब्बे जुलजलाल मेरे और इनके मुतालिक अपना फैसला सादिर फरमा दे, मुझे आप इस मामले में माजूर समझते हुए इन मुजाहिदीन इस्लाम में रहने की इजाजत दे दें। जब ये खत अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचा तो इसको पढ़ के अब बेख्तियार रोने लगे। आपके पास बैठे हुए सहाबा ने आपको रोते देखा तो पूछा क्या अबू बैदा बिन जर्रा फौत हो गए? फरमाया नहीं, लेकिन मौत अब उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। और वाकई हजरत उमर की बात सही थी, थोड़े ही अरसे बाद अबू बैदा बिन जर्रा को ताऊन ने आ पकड़ा। जब मौत का वक्त करीब आया तो अपने लश्कर को नसीहतें की और ये फरमाया कि देखो, अपने हुक्मरानों के साथ खैरख्वाही से पेश आना और इन्हें कभी धोखा ना देना। देखना कहीं दुनिया तुम्हें गाफिल ना कर दे। मेरी ये बात गौर से सुनो, अगर किसी इंसान को 1,000 साल भी जिंदगी मिल जाए, आखिरकार उसका अंजाम वही होना है जो आज तुम मेरा देख रहे हो। मौत से कोई नहीं बच सकता। सबको मेरी तरफ से सलाम और तुम पर अल्लाह अज्जा वजल की रहमत हो। फिर हजरत मुआज बिन जबल की तरफ मुतवज्जे होके फरमाया, मुआज लोगों को नमाज पढ़ाया करें, यानी उनको अपने बाद वहां की इमारत उनको सुपुर्द की कि मेरे बाद आप अमीर होंगे, और वफात पा गए। इनके वफात पाने के बाद हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं लोगों से, लोगों आज तुम एक ऐसी शख्सियत के गम में मुबतला, खुदा की कसम मैंने उनसे बढ़ के नेक दिल और हसद और बुग़्ज़ से पाक सीना और आखरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला और लोगों के साथ खैरख्वाही से पेश आने वाला किसी और को नहीं पाया। अल्लाह हू अकबर। यानी उनके अंदर ना कोई ये था कि किसी ओहदे की चाहत, बड़े ओहदे पे रहे तब भी उनकी जरा भी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, तब भी उनको कोई चीज ने हिलाया नहीं, और तब भी वो उसी तरह सादा जिंदगी गुजारते रहे, हत्ता कि अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। और ये शहादत किस तरह है, आपको पता है कि ताऊन की बीमारी से भी कोई दुनिया से जाता है तो वो भी एक शहादत है। और ये सुभान अल्लाह जो शहादत वाली हदीस है ना, वो इन्हीं ने रिवायत की भी है कि ताऊन से जो मरे या जो डूब के मरे या जो आग में जलने से मरे, वो रिवायत भी इनके थ्रू ही हमें मिलती है, सुभान अल्लाह। तो कहा जाता है कि इनके जो बेटे थे भी, वो भी इसी बीमारी में दुनिया से रुख्सत हुए। मार कैफ उनके एक बेटे की कोई आगे नस्ल चली लेकिन दूसरे की नहीं चली, इस तरह की भी रिवायात मिलती हैं। ज़्यादा नहीं मिलता इनकी फैमिली के बारे में आगे, मगर अगर आज दुनिया के अंदर दूर दूर तक इस्लाम फैला हुआ है तो वो आज की फतूहात नहीं है, वो इनके वक्त की हैं। टर्की तक ही आ गए थे, टर्की तक आ गए थे, इससे आगे नहीं जा सके थे, बस यही उसके बाद ये ताऊन फैला। उससे पहले कहत पड़ गया था हिजाज में, अरब में, तो उसमें तो वहां तक इनकी फौजें रुक गई थी। और उसके बाद तो फिर बहुत अरसे बाद तुर्की फतह हुआ और बाद में तो, लेकिन कहाँ से निकले और कहाँ तक पहुंच गए थे, तो इसका सेहरा इनके सर जाता है। ये सहाबा का कराम अपनी जिंदगियों को, यानी इन्होंने घोड़े की पीठ पे गुजारी, मदीना में नहीं रहे थे, कहाँ कहाँ पहुंचे और कहाँ कहाँ इस्लाम फैला इनकी कोशिशों की वजह से। अल्लाह ताला इनके ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला इनके नक्शे कदम पे हमें भी चलने की तौफीक दे कि हमारे अंदर भी अल्लाह ताला आजी पैदा कर दे और हुब्बे जाह से हमें महफूज रखे कि हमें ओहदों की, कुर्सियों की, नामों की चाहत जो है इससे हमें बेनियाज कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।